जय राधमाधव कुंज बिहारे,
यह प्रवचन श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज द्वारा श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के प्राकट्य दिवस पर 15 सितंबर 2016 को इस्कॉन जुहू में दिया गया।
गोपी जन वाला भारे नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। तो आज बहुत ही शुभ दिन है, ऐसे तो देखा जाए हर दिन शुभ रहता है, पर आज खास शुभ दिन है क्योंकि आज के दिन महान संत ठाकुर भक्तिनाथ जी इस पृथ्वी पर प्रकट हुए थे। और आज के दिन हरिदास ठाकुर प्रकट भी हुए थे। दैट्स टुडे। नो नो नो, इट्स रॉन्ग। यू डिडंट रीड द वैष्णव कैलेंडर राइट। इट सेज इन बॉम्बे observed on 15th. In eastern India, it is on 16th. On west and north, it is today. Yeah. So, हम संक्षेप में summary उन्हों की चर्चा करेंगे। पहले किसी कहें हरिदास ठाकुर या ठाकुर भक्तिनोद? ठाकुर भक्तिनोद। हम पहले भक्तिनोद ठाकुर का प्रणाम मंत्र का उच्चारण करेंगे। आप सब बोलिए नमो भक्ति विनोदाय सचिन नंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूप नुग बनायते। मैं सचिन भक्तिनाथ ठाकुर को प्रणाम करता हूँ जो कि चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति है, जो कि और सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। प्रभुपाद जी ने एक समय कहा था, ठाकुर भक्तिनोद वाज वर्चुअली द फाउंडर ऑफ द कृष्ण कॉन्शियस मूवमेंट। प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य हैं। प्रभुपाद जी कह रहे थे ठाकुर भक्तिनोद जी असली संस्थापक आचार्य हैं। तो ठाकुर भक्तिनोद जी का जन्म हुआ था 1838 में, और एक बड़े धनी खानदान में। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर हम संक्षेप में दोनों की चर्चा करेंगे, भक्तिनाथ ठाकुर और हरिदास ठाकुर। उनका जन्म हुआ था बहुत धनी खानदान में। छोटी आयु में ही उन्होंने उड़िया भाषा में शिक्षा प्राप्त की थी, अंग्रेजी भाषा में, बंगला भाषा में। और ठाकुर भक्तिनोद भौतिक दृष्टि से बहुत पढ़े हुए थे, अच्छी शिक्षा थी। तो ठाकुर भक्तिनोद एक समय चैतन्य चरितमृत को खोज रहे थे और ढूंढने पर भी उन्हें चैतन्य चतुर्मिता नहीं मिली। एक रूप से ठाकुर भक्तिनोद चैतन्य महाप्रभु जी की दिव्य शक्ति हैं, और उन्होंने देखा कि वैष्णव सिद्धांत जो कि चैतन्य महाप्रभु ने दिया था वो गलत हाथों में आ गया है। साझा लोगों की संख्या बढ़ गई थी, लोग सोचते थे वैष्णव धर्म लड़की बाजी करते धर्म है, क्योंकि लोग वैष्णव सिद्धांत का दुरुपयोग कर रहे थे। तो ठाकुर भक्तिनो जी ने ठीक रूप से चैतन्य महाप्रभु जी की सिद्धांत की स्थापना की। अंग्रेजों के समय उनको बड़ा ऊंचा पद दिया गया था, डिप्टी मैजिस्ट्रेट का पहले, बाद में वो मैजिस्ट्रेट बन गए थे। उन दिनों में भारतीयों को इतना ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। तो ठाकुर भक्तियों ने जब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे, कई कमियों को ठीक किया। उन्हें अंग्रेजी सरकार ने जगन्नाथपुरी बंदर की देखभाल की जिम्मेदारी दी थी, क्योंकि उन दिनों में बहुत सा गोलमाल हो रहा था पैसे के विषय में। वहां का जो राजा था उसे पकड़ा भक्तिनाथ ठाकुर ने, 88,000 रुपीज का गोलमाल कर रहा था, जगन्नाथपुरी मंदिर का धन था। तो ठाकुर भक्तिनाथ जी ने उन्हें कहा, तुम भोग का खर्चा दो एक साल के लिए। राजा ने बड़ा अपमान महसूस किया, मेरी बेइज्जती कर दी इस डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने। तो उसने जगन्नाथपुरी के मंदिर के ब्राह्मणों को लेकर एक महीने का यज्ञ किया इस उद्देश्य के साथ कि भक्तिनाथ ठाकुर को कुछ हो जाए। परंतु में क्या हुआ, इस यज्ञ के आखिरी दिन पर राजा का बेटे का देहांत हो गया, भक्तिनाथ ठाकुर को कुछ नहीं हुआ। ठाकुर भक्तिनाथ ने कई कमियों को रोका जंगलपुरी मंदिर में। उस समय एक भोगी योगी था, लोगों के साथ लोगों की माताओं बहनों बेटियों के साथ रासलीला करता था। तो अंग्रेज सरकार को काफी कंप्लेंट्स आई, और साथ में एक बार योगिक शक्तियां थी, उसने एक आंदोलन शुरू किया था अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए। और उसने कहा था, मैं अंग्रेजों को बाहर निकालकर मैं पूरे भारत का राजा बन जाऊंगा। तो एक तरफ से रासलीला, दूसरी तरफ से अंग्रेजी सरकार को बाहर निकालना। तो अंग्रेजी सरकार ने यह केस की जिम्मेदारी ठाकुर भक्तिनाथ को दी। ठाकुर भक्तिनाथ मुसलमान पुलिस में उनको लेकर, क्योंकि ये जो योगी था बड़ा प्रसिद्ध था, बहुत सी शक्तियां थी, सब उनको आदर देते थे, सब उनसे डरते थे। तो भक्तिनाथ ठाकुर को पता था हिंदू पुलिस में ले जाएंगे तो गिरफ्तार नहीं करेंगे, ये डरते थे उनसे। तो 30 मुसलमान पुलिस मैन को लेकर पहुंचे जहांगीर, ये योगी ठहरा था। तो योगी पहचान गया, केदारनाथ दत्ता आया है इधर, ये था उनका भौतिक नाम। तो ठाकुर भक्त योगी ने कहा, केदारनाथ दत्ता, मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो, तो तुम जानते नहीं मैंने अंग्रेजों को यहां से निकालना है और फिर मैं राजपाल बनूंगा और तुम्हें इस स्थान का राजपाल बनाऊंगा। ठाकुर भक्त ने कहा, और ये भी कहा उसने, तुम जानते नहीं मैं महाविष्णु का अवतार हूं। तो ठाकुर भक्त ने कहा, अगर तुम महाविष्णु के अवतार हो तो जगन्नाथपुरी मंदिर में क्यों नहीं निवास करते, यहां क्या कर रहे हो जंगल में। तो इस योगी ने कहा, जगन्नाथपुरी मंदिर वो तो लकड़ी की मूर्ति है, वो भगवान थोड़ी है। जैसे उसने ये कहा, अग्निनाथ ठाकुर ने पुलिसमैन को कहा, इसे गिरफ्तार कर लो। इस व्यक्ति को फिर ले गए थे पूरी, वहां केस हुआ 18 दिनों के लिए। और जब ये केस हो रहा था, भक्तिराम ठाकुर के सारे लगभग खानदान के सदस्य बीमार हो गए, एक बेटी मरने वाली थी, तो पूरा शहर ये कहने लगा कि भक्तिराम ठाकुर ने महान अपराध किया है जिसका ये परिणाम है। सब कह रहे थे छोड़ दो छोड़ दो। भक्तिराम ठाकुर को पता था ये व्यक्ति ढोंगी है, उसने कहा मेरे सारे पत्नी बच्चों को मरने दो, मैंने इसको नहीं छोड़ना। और जैसे निर्णय देना था 18वें दिन, योग उस योगी की शक्ति से ठाकुर भक्तिराम का दाहिना साइड बिल्कुल पैरालाइज हो गया, हिल नहीं, हाथ को हिला भी नहीं सके। जब भी उन्होंने निर्णय दिया और इस योगी को 18 महीने की सजा दी जेल में, जब इसे जेल से कोर्ट रूम से ले जा रहे थे, एक अंग्रेज वकील ने पीछे से आकर इस योगी का सीका काट लिया, क्योंकि वो कहते थे योगी अपनी शक्ति रखते हैं सीके में। और 3 महीने बाद उस योगी ने जहर पीकर आत्महत्या कर लिया। और ठाकुर भक्तिनाथ के सारे घर के सदस्य ठीक हो गए। तो ठाकुर भक्तिनाथ बड़े बोल प्रचारक थे, उन्हें सातवा गोस्वामी बुलाया जाता था, और उन्होंने लगभग 100 ग्रंथों की रचना की अंग्रेजी ओड़िया बंगला भाषा में। लगभग सारे भजन जो हम गाते हैं उनकी रचना भक्तिराम ठाकुर ने की है। और ठाकुर भक्तिराम जी ने शुद्ध रूप से कृष्ण भक्ति की स्थापना की। मैं पढ़ना चाहता हूँ उनकी एक रचना से उन्होंने क्या उपदेश दिया है हमें। वो ठाकुर भक्तिराम कहते हैं, यू शुड ऑलवेज ऑब्जर्व योर माइंड इन इंटेंटिवली चैनिंग कृष्णा ग्लोरी। अपने मन में सदा ये भाव रखो कि तुम कृष्ण भगवान की महिमा का गुणगान करोगे। ये भाव होना चाहिए मन में कि हमें सदा उनका गुणगान करना है। और परफॉर्मिंग कृष्णा कीर्तन यू गेन मास्टरी ओवर द माइंड। तो आगे ठाकुर भक्तिराम कहते हैं, कृष्णा का कीर्तन करोगे तो उसके द्वारा मन को वश में ला सकोगे। हम सब कहते हैं मन सता रहा है, मन चंचल है, मन ढीत है, क्या किया जाए। ठाकुर भक्तिराम आपको उपाय दे रहे हैं, कह रहे हैं कृष्णा का कीर्तन करो, जप करो, उसके द्वारा मन को वश में ला सकोगे। गिव अप ऑल फॉल्स प्राइड। झूठा अहंकार जो है उसे त्यागो। हम सबके हृदय में अहंकार है, सच झूठ। हमारे शरीर का वजन है 70 किलो, अहंकार का वजन है 140 किलो। और इस अहंकार के कारण हम किसी की राय स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम जानते हैं सब कुछ। चैतन्य महाप्रभु ने इस विचार का विरोध किया है। इसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं सिनाल पिसरी चेना रोग मानने न मना लेना। चैतन्य महाप्रभु ने अपने उदाहरण से हमें शिक्षा दी कि इस प्रकार का भाव होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु छोटी आयु में ही संस्कृत के विद्वान बन गए थे। तो एक समय वो वाराणसी में थे, मायावादियों की संगत में। मायावादी ने उन्हें कहा, आप इतने बड़े संस्कृत के विद्वान हो, हमारे साथ बैठकर वेदांत सूत्र का अध्ययन क्यों नहीं करते? क्या ये पागलों जैसे नाचते हो गाते हो? महाप्रभु ने कहा, क्या कहा? मेरे गुरु ने सोचा मैं तो मूर्ख हूं, और उन्होंने कहा तुम केवल हरिनाम के योग्य हो। यह है विनम्रता का भाव। कृष्णदास काविराज कहते हैं, मेरा नाम ही मत लो, मेरा नाम लोगे तो तुम्हारे सारे गुण समाप्त हो जाएंगे। तो ठाकुर कह रहे हैं, अहंकार को त्यागो। आप पूछोगे अहंकार को कैसे त्यागे? अहंकार को त्याग करोगे ज्ञान के आधार पर और हरिनाम के बल पर। ऑलवेज थिंक योरसेल्फ टू बी वर्थलेस, डेस्टिट्यूट, लोअर एंड मोर हम्बल एंड स्लो इन द स्ट्रीट। अपने आप को सदा ये सोचो, अरे बो सोने उधर। अपने आप को केवल ये सोचो कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो। क्या हो? हम तो सब सोचते हो भगवान की खास देन है इस पृथ्वी पर। हम सोचते हैं आई एम स्पेशल। नहीं, सबको भी एक भी ट्रीटमेंट चाहिए। तो कई ठाकुर वक्त कहते हैं, अभी आपको सोचो कि तुम बिल्कुल निकम्मे हो, घास से भी ज्यादा पतित। घास के ऊपर सब चलते हैं लेकिन नहीं, और घास कुछ कहता है कुछ नहीं। तो अपने आपको घास से भी ज्यादा पतित मानो। ये भाव चैतन्य महाप्रभु प्रकट करते हैं श्री शास्त्र के श्लोक में। Practice forgiveness like the tree. जो पेड़, ये भी महाप्रभु का उदाहरण है। जो पेड़ है उसमें क्षमा की भावना रहती है। आप पेड़ को काटते हो आग पैदा करने के लिए, तो भी पेड़ आपकी सेवा करता है। तो हमारे में क्षमा की भावना होनी चाहिए। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात अगर युधिष्ठिर मना चाहते तो धृतराष्ट्र को कैदी बना सकते थे। युधिष्ठिर मना ने क्या कहा? उन्होंने शोक प्रकट किया कि इस युद्ध में उनके सारे सरदार पुत्र मारे गए हैं। युधिष्ठिर ने कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? और फिर उन्हें एक महल दिया नौकरों के साथ रहने के लिए। उन्होंने बदला नहीं लिया। तो भक्त में बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। कहते हैं ना, नैले पे देला, नैले का देला का भाव नहीं होना चाहिए। गिव अप ऑल वायलेंस टुवर्ड्स अदर लिविंग बींग्स, यू शुड मेंटेन देम। किसी जीवात्मा को कष्ट मत दो। आज आप देखते हो कि धर्म के नाम पर कितना अधर्म किया जाता है। जैसे कल एक धर्म में, पता है मैं बोला नहीं जाता, एक धर्म में लाखों पशुओं का के ऊपर अत्याचार किया गया। हिंदू में भी कई बार किया जाता है। जो वैष्णव भक्त है वो एक चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहता। जद भारत जब अपने पैरों को नीचे रखते थे, देखते थे कि आगे 3 कदम तक कोई चींटी तो नहीं है। बिगाड़ी शिकारी जो पशुओं को घायल करके आनंद उठाता था, बेचता था, नारद मुनि की संगत से ऐसा परिवर्तन हुआ कि वह पैरों को भी नहीं नीचे रखता था, ये देखे मेरा कोई चींटी तो नहीं है। तो ठाकुर भगवान कहते हैं किसी पशु के प्रति किसी के प्रति अहिंसा का भाव नहीं रखो और सब जीवात्मा को संभालो. Throughout your life, you should never give anxiety to others. इस प्रकार का व्यवहार रखो जिसके द्वारा आप किसी को चिंता नहीं दो. अक्सर हम क्या सोचते हैं, हमारा स्वार्थ, हमारे लिए क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए. पर भक्ति में ठाकुर कह रहे हैं शरणागति में ऐसा स्वभाव रखो कि तुम किसी को चिंता नहीं दो. ये नहीं जैसे अब आश्रम में जाते हो, ब्रह्मचारी सो रहे, अब देर से जाते हो, बत्ती ऑन कर देते हो, सब जो सो रहे हैं सुबह मंगल आरती में आने के लिए उनको जगा देते हो. ब्रह्मचारी सो रहे हैं, जोर जोर से बात करोगे वो भी ठीक नहीं है. आप अब मंदिर में जाप करते हो, इतनी जोर से जाप करोगे दूसरे व्यक्ति अपना जाप नहीं सुन सके. इन सब चीजों में हमें सावधान रहना चाहिए. ठाकुर भक्तिनाथ जी कह रहे हैं कि अपने जीवात्मा का आचरण ऐसे रखो कि अपने कारण किसी को कष्ट मत दो. आप समझे, बट डू गुड टू देम, मेक देम हैप्पी एंड फॉरगेट अबाउट योर ओन हैप्पीनेस. तो आगे भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ऐसा कार्य करो जिसके द्वारा सबको सुख पहुंचे और केवल अपनी खुशी का मत सोचो. हम अक्सर क्या करते हैं, अपनी खुशी का ही सोचते हैं ना. हम सोचते हैं हमारी खुशी में भगवान की खुशी, मतलब कि जो हमारी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी तो भगवान भी खुश होंगे. पर हमारा सिद्धांत है भगवान की खुशी में हमारी खुशी. जिस कार्य द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हो उससे हम प्रसन्न होते हैं. तो ठाकुर भगवान कह रहे हैं किसी को चिंता मत दो और सबको खुश रखो. तो सबको खुश कैसे रखोगे, भौतिक सुविधाएं देकर नहीं, कृष्ण भक्ति का ज्ञान देकर. भक्त के मन में यह विचार है कि जब तक हम कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं करें ये जीवन अधूरा माना जाएगा. चाहे कितना भी भौतिक सुख, कल वामन देव जी का आविर्भाव तिथि थी तो वामन देव जी जब बाली महाराज के यज्ञशाला में गए, बाली महाराज ने उनका स्वागत किया, चरण धोए, कहा कि कितने भाग्यशाली हैं, और आगे पूछा आप मेरे यज्ञशाला में आए हो, वास्तवधर्मा यज्ञ कर रहे थे, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूं. तो वामन देव ने कहा, वामन देव का एक और नाम है उरुक्राम. वामन देव जी ने कहा आप मुझे उतना स्थान दे दो जहां कि मैं 3 कदम रख सकूं. बाली महाराज आश्चर्य हो गए, मैं तुम्हें पूरा लोक दे सकता हूं, सागर दे सकता हूं, अनेक देश दे सकता हूं, इतनी छोटी भेंट मांग रही हो मेरे से. फिर वामन देव ने कहा जिस व्यक्ति ने मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया उसे अगर आप सारे विश्व का धन भी दोगे तो वो संतुष्ट नहीं रहेगा. और जिसने मन और बुद्धि को वश में किया वो हर स्थिति में संतुष्ट रहेगा. ये भाव ठाकुर भक्ति में क्या कह रहे हैं, सबको सुखी बनाओ पर कृष्ण भक्ति के माध्यम से. Thus, when you become a pious good soul, possessing all good qualities, you should give up desire for fame and honor. आगे कहते हैं, इन आध्यात्मिक गुणों को अनुकूल करो, ये भाव छोड़ो कि हमें नाम चाहिए, आदर चाहिए, पद चाहिए. हम सब नाम के पीछे प्रयास करते हैं, हमें नाम चाहिए, नाम नहीं आ जाए तो ताली मारनी चाहिए भक्तों को. तो ठाकुर भक्त क्या कह रहे हैं, ये भाव छोड़ो कि नाम चाहिए, आदर चाहिए. जस्ट मेक योर हार्ट हम्बल. ठाकुर आगे कहते हैं, अपने हृदय को विनम्र बनाओ. विनम्रता का भाव, अगर आप भगवान को प्रसन्न करना चाहते हो तो इसमें किस चीज की आवश्यकता है? विनम्रता की आवश्यकता है. Knowing that Lord Krishna lives within all beings, you should respect and honor everyone. भक्त जानते हैं कि भगवान हर एक हृदय में विराजमान है. किस रूप में? परमात्मा के रूप में. इसलिए ठाकुर भगवान कहते हैं, सब जीवात्मा को आदर दो. ये नहीं हम मनुष्यों को आदर देंगे, पशुओं को नहीं. You will attain virtue by being humble, merciful, respecting others, and respecting desires of fame and honor. आगे वो कहते हैं ठाकुर के नाम, तुम पुण्य कमाओगे अगर तुम नम्रता और मर्सीफुल, दयालु. दयालु का अर्थ है असली दयालु कौन व्यक्ति है जो कि भगवान का नाम का प्रचार करता है. ऐसी दया है भगवान का नाम का उपदेश देना. ये करने से अब भगवान की कृपा प्राप्त होगी. In such a stage, you just sing the glories of the Supreme Lord. ये भावना रखकर अब हरि नाम का जाप सदा कर सकोगे. जैसे भक्ति, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, विनम्रता का भाव रखोगे, सहनशील होगे, तो सदा हरि का नाम ले सकोगे. तो अगर आप चाहते हो कि आप सदा हरि का नाम लो, तो ये भाव रखो. और चैतन्य ठाकुर भक्ति जी उन्होंने एक ग्रंथ लिखा था शरणागति. ये जो हमने आपको दो पैराग्राफ पढ़ के सुनाए, ये है शरणागति ग्रंथ से. ठाकुर भक्ति राव जी दिन में 3 घंटा सोते थे, बस 9 घंटा लिखते थे, 4.5 घंटा दिन में जाप करते थे, 6 घंटा दिन में काम करते थे. कहा जाता है वो एक केस को कि वो जज थे, जो केस सुनने में दूसरे वकील 6 दिन लगाते थे, वो आधे घंटे में खत्म कर देते थे. बहुत तेज थे केस को सुनने में और निर्णय देने में, इतने तेज ये अंग्रेज लोग भी उनसे डरते थे. तो ठाकुर भक्ति नव जी की कई लीलाएं हैं, कई उपदेश है. 1896 जिस साल प्रभुपाद जी प्रकट हुए थे पृथ्वी पर, उस साल से भक्तिनव ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय प्रचार आरंभ किया. उन्होंने एक छोटी किताब लिखी थी, लॉर्ड चैतन्य लाइफ एंड प्रीसेप्ट्स, 47 पेज बुक, जो उन्होंने विश्व के महाविद्यालयों को भेजा. प्रभुपाद डेडिकेट्स टीचिंग द लॉर्ड चैतन्य टू भक्तिनव ठाकुर. प्रभुपाद जी ने चैतन्य महाप्रभु जी के ऊपर ग्रंथ को भक्तिनव ठाकुर के चरणों में अर्पण किया और कहा, जिस साल मैं प्रकट हुआ था पृथ्वी पर, उस साल भक्तिनव ठाकुर ने अपना अंतर्राष्ट्रीय प्रचार शुरू किया. ठाकुर भक्तिनव जी की भविष्यवाणी थी, क्या? एक महारथी आएगा बहुत ही जल्द. वो महारथी क्या करेगा? सारे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार करेगा. और वो महारथी कौन थे? उनकी भविष्यवाणी थी, एक दिन अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस के लोग मायापुर धाम में आएंगे और वहां के बंगाली भक्तों के साथ मिलकर उत्साह से नाचेंगे और गाएंगे. और एक दिन दुनिया के कोने कोने में लोग मृदंगा बजाएंगे और करता बजाएंगे. ये तीनों बातें सच निकल आई है. ठाकुर भक्ति जब मैजिस्ट्रेट थे उनके मन में शक था कि जो चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान है नवद्वीप नहीं है, और बहुत समय उन्होंने काटा ये पता लगाने में महाप्रभु का जन्म स्थान कौन सा है. जब उन्होंने स्थापित कर लिया कि मायापुर है जन्म स्थान उनका, तो अपने चैतन्य महाप्रभु का तो अपने शिक्षा गुरु जगन्नाथ बाबा जी को लाए. भक्तिनाथ ठाकुर ने दीक्षा ली थी विपिन बिहारी से और शिक्षा ली जगन्नाथ बाबा जी से. जगन्नाथ बाबा जी उस समय 144 साल के थे और वो चल भी नहीं सकते थे. तो ठाकुर भक्ति ने उन्हें प्रबंध किया कि भक्त जगन्नाथ बाबा जी को लाया जाए. उनको टोकरी में बिठाकर उठाया जाता था उनके सेवक के द्वारा. तो जगन्नाथ बाबा जी को लेकर आए उस स्थान में जहाँ की भक्तिनाथ ठाकुर ने सोचा जन्म स्थान है. जगन्नाथ बाबा जी खुद टोकरी से छलांग लगा दी और नाचने लगे गाने लगे और कहा यही है यही है यही है यही है चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म स्थान. तो ठाकुर भक्तिनाथ ने चैतन्य महाप्रभु जी का जो असली जन्म स्थान है वो भी उन्होंने स्थापित किया. तो हम सबका बहुत गहरा आभार है ठाकुर भक्तिनाथ जी के प्रति. उनकी कृपा से भक्ति सिद्धांत जी और प्रभुपाद यह आंदोलन को आगे बढ़ा सके. ठाकुर भक्तिनाथ जी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसा प्रतिनिधि भेजना जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके. इस प्रार्थना के उत्तर में भगवान ने कैसे भेजा भक्ति सिद्धांत. तो आज कहने के लिए तो बहुत कुछ है, समय का भाव है. तो और जैसे मैंने कहा भक्तिनाथ ठाकुर के विषय में कहा जाता है छह गोस्वामी थे वृंदावन के और भक्तिनाथ ठाकुर हैं सातवें गोस्वामी. और अपनी रिटायरमेंट के बाद क्या करा, मैं घर घर जाकर एक एक रुपये इकट्ठा किया भगवान का एक मंदिर बनाने के लिए. तो आज के दिन भक्तिनाथ ठाकुर 1838 में प्रकट हुए थे. तो हम सबको पुष्पांजलि होगी. पुष्प ठाकुर भक्तिनाथ जी के चरण कमल में प्रणाम करके उनसे भीख मांगनी चाहिए क्या कि हमें कृपा दो कि हम उनकी शिक्षा के आधार पर भक्त बने. जो मैंने पढ़कर सुनाया आपको ये भक्तिनाथ ठाकुर की शिक्षा है. हमें क्या भाव रखना चाहिए, वो भाव आप अनुकूल करना चाहते हो? हाँ ना नहीं? कोई जवाब नहीं दे रहा. नहीं करना चाहते. हाँ तो भक्तिनाथ ठाकुर से प्रार्थना करो कि आप में बल आए उनकी शिक्षा का पालन करने के लिए. सचिनंदा ठाकुर भक्तिनाथ की. तुम्हारे एक महान कौन संत हरिदास ठाकुर का भी तिरभाव है. आविर्भाव मतलब जब संत प्रकट होता है, तिरभाव का अर्थ है जब वो अप्रकट होता है. हरिदास ठाकुर के विषय में कहना बहुत है कहने के लिए, संक्षेप में कुछ पॉइंट्स बताएंगे. हरिदास ठाकुर को वैसे ब्रह्मा जी का अवतार माना जाता है. ब्रह्मा जी ने भगवान की एक बार परीक्षा ली थी. उन्होंने उनके ग्वालों और बछड़ों को चुरा लिया था, छुपा दिया था, एक साल के लिए सुला दिए था. जैसे ऑपरेशन से पहले डॉक्टर क्लोरोफॉर्म देते हैं आपको बेहोश करने के लिए, तो ब्रह्मा जी के पास एक सा का क्लोरोफॉर्म था वो, और फिर उन्होंने देखा कि भगवान ने अपना विस्तार करके उनको असफल बना दिया। तो ब्रह्मा जी पछताए, भगवान का गुणगान किया, भगवान से प्रार्थना की थी कि मुझे ऐसे स्थान में जन्म देना जहां मैं बड़ी विनम्रता से आपकी सेवा कर सकूं, और मेरे में अहंकार नहीं आए। वो तो उन्होंने जन्म लिया मुसलमान खानदान में, वो गांव का नाम भूल गया, वो बांग्लादेश में है। हरिदास ठाकुर जैसे आप जानते हो 3,12,000 दिन में जाप करते थे, 192 राउंड, और क्योंकि वो मुसलमान खानदान में जन्म लिया था उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक समय मुसलमान राजा ने हरिदास को बुलाया, साथ में काजी भी आया। काजी था एक एरिया का इंचार्ज और धर्म का ज्ञानी। राजा ने बड़े प्रेम से कहा हरिदास से, हरिदास तुमने इतने ऊंचे धर्म में जन्म लिया, मुसलमान जन्म में, क्या तुम हिंदुओं का हरि नाम कर रहे हो? तुम कुरान पढ़कर पछतावा करो और अल्लाह का नाम लो। हरिदास ने कहा एक ही भगवान है, किसी का भी नाम ले लो, क्या इतराज है? काजी ने कहा ये हरिदास कभी नहीं सुधरेगा, इसको पीटना चाहिए बाजारों में तो ये सुधरेगा। राजा चुपचाप रहा। तो काजी के कहने पर हरिदास को 22 बाजारों में घसीट कर ले गए और राजा के प्रतिनिधि पुलिसमैन लगातार पीट रहे थे। किसको? अक्सर उनका अनुभव यह था जब इस प्रकार की सजा दी जाती थी लोगों को, जब तक व्यक्ति दूसरे बाजार में पहुंचता था वो मर जाता था, इतनी भारी रूप से पीटते थे। पर ये तो 22 बाजार में इनको घसीट कर ले गए। कितने? 22। लगातार जाप करते गए, वो जो सेवक थे वो बड़े जोर से पीट रहे थे। फिर जब 22 बाजार में पहुंचे वो मरा नहीं हरिदास, तो जो पीट रहे थे उन्होंने कहा हरिदास तुम्हारे कारण हमारी मृत्यु हो जाएगी। हरिदास ने कहा क्यों? तुम्हें हम 22 बाजारों में पीटा है, तुम मरे नहीं, तुम्हें कुछ चोट भी नहीं लगी, तुम इतने उत्साह से हरि नाम कर रहे हो, इसके कारण राज काजी हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा, हमें फांसी लगा देगा। हरिदास का भाव देखो। हरिदास ने कहा, हरिदास ने अपनी योगिक शक्तियों द्वारा सांस लेना बंद कर दिया, ऐसे लगा कि हरिदास मर गया है। तो हरिदास क्या सोच रहा था? जो उनको पीट रहे हैं उनका भला। देखो हरिदास का भाव, उनको पीटा जा रहा है बाजारों में, उनको मारने का प्रयास कर रहे हैं, पर हरिदास क्या सोच रहे हैं? उनकी सुरक्षा। तो हरिदास बिल्कुल सांस लेना बंद कर दिया। तो जो पीट रहे थे बड़े खुश हो गए, नाचने लगे, गाने लगे, चलो अभी मर गया मर गया। उसको उठा कर ले गए राजा के पास। वो सोच रहे थे हरिदास मर गया है। राजा ने देखा खुश हुए, राजा ने कहा इसको दबा दो मुसलमान रीतियों के अनुसार। काजी ने बोला नहीं ये पापी है, इतने ऊंचे धर्म में जन्म लेकर हिंदुओं का नाम ले रहा था, इसको ये आदर नहीं मिलना चाहिए कि मुसलमान बरियल मिले, फेंक दो इसको गंगा में। हरिदास को गंगा में फेंक दिया। जैसे गंगा में पहले फेंकने से पहले सब फोड़ने रखा में फेंकने से पहले जो गंगा में फेंक दिया तो गंगा हरिदास तैर के दूसरे तरफ गंगा के जाकर पेड़ के नीचे बैठकर जाप करने लगा। हरिदास जाप कर रहा था, सूचना पहुंच गई राजा तक, वही हरिदास जिसे हमने 22 बाजार में पीटा था, जो मर गया था, आज जाप कर रहा है। राजा समझ गया ये व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है। फिर राजा उधर आया, राजा ने प्रणाम किया हरिदास को और राजा ने हरिदास से माफी मांगी कि हमने बड़ा महान अपराध किया है। हरिदास ने राजा को माफ कर दिया। हरिदास ठाकुर के मन में सदा एक ही भाव था, हरिदास ठाकुर और अद्वैताचार्य। हरिदास ठाकुर ने अद्वैताचार्य से दीक्षा ली थी और शांतिपुर में दोनों सारा दिन भागवत पढ़ रहे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। आज लोग इतने पतित हो गए हैं, आपको स्वयं प्रकट होना पड़ेगा पतितों का उद्धार करने के लिए। तो हरिदास ठाकुर जैसे मैंने कहा दिन में 3 लाख बार जाप करते थे। वहां का जो जमींदार था रामचंद्र खान, उसके मन में बड़ी ईर्ष्या थी, ये हरिदास को इतना आदर मिल रहा है, दूर दूर से लोग आते हैं उसे देखने, मुझे कोई देखने नहीं आता। उसने सब वैश्यों को बुलाया, मैं चाहता हूं कि किसी प्रकार से हरिदास को आकर्षित किया जाए, तो मुझे कौन ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। सारे वैश्यों ने कहा हम तो उस संत को आकर्षित करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो एक बड़ी खूबसूरत वैश्य ने कहा रामचंद्र ये जिम्मेदारी मुझे दो, मैं एक दिन में फंसा दूंगी हरिदास को। तो गई हरिदास एक कुटिया में बैठकर जाप कर रहे थे, गई द्वार पे बैठी और बड़े सुंदर तरीके से हरिदास की इंद्रियों को आकर्षित करने का प्रयास किया। हरिदास हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम मैं लगे थे। हरिदास ने कहा मेरा जाप समाप्त नहीं हुआ, जाप समाप्त करने दो फिर मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। इस प्रकार अगला दिन आ गया, वैश्य ने रामचंद्र खान को कहा कल मैं उसको नहीं फंसा सकी पर आज जरूर फंसाऊंगी, मुझे कहे आज संतुष्ट करेगा। इस प्रकार 3 दिन बीत गए। 3 दिन के तीसरे दिन इतना ऐसा प्रभाव हुआ कि वो वैश्य जो द्वार में आई बैठी थी, जो हरिदास को आकर्षित करने का प्रयास कर रही थी, वो भी हरि नाम का जाप शुरू कर दिया। और फिर उस वैश्य ने कहा ये रामचंद्र खान ने मुझे भेजा था आपको आकर्षित करने के लिए। हरिदास ने कहा यह मूर्ख है मैं ये स्थान से जाने वाला था, क्योंकि तुम आई हो तो मैं इसलिए मैं यहाँ रुक गया तुम्हारे उद्धार के लिए। और फिर ये वैश्य बहुत ऊंचे कोटि की भक्त बन गई, सारी संपत्ति उसने अपनी बांट दी। वो बहुत जितना जाप करती थी तो एक चावल का दाना, जैसे आप माला में गिनती करते हो ना कितनी माला की, वो एक माला करती थी तो एक चावल का दाना पास में गिराती थी। वो जितने दाने गिराए हैं उतने ही दाने खाती थी सारा दिन। और भक्त बनने कैसे, हरिदास की संग से। आपको भी ऐसे ही खुराक दिया जाए, 16 दाने दिन करोगे 16 दाने चावल के मिल जाएंगे खाने के लिए। हरिदास की संगत से वो भक्त बन गए। जिससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये शिक्षा मिलती है कि अगर आप ध्यान से हरि नाम करोगे तो माया देवी जो आकर्षित करने का प्रयास करते रहती है वो हार जाएगी। अगर आप जाप नहीं करते ध्यान से, ग्रंथों को नहीं पढ़ते, जब माया देवी आएगी तो हम विचलित हो जाएंगे। क्या कृष्ण को चुनूं या माया को चुनूं? एक समय माया देवी आई थी हरिदास को आकर्षित करने के लिए, असफल हो गई। यह माया देवी ने एक समय ब्रह्मा जी को भी आकर्षित कर लिया था, हरिदास के सामने असफल हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हरि नाम में इतनी शक्ति है कि अगर ध्यान से हरि नाम का जाप करोगे तो माया के प्रभाव से बच सकोगे। ये नहीं कि 500 साल पहले हरि नाम की शक्ति थी, अब 500 साल बाद शक्ति कम हो गई है। हरि नाम में आज भी उतनी शक्ति है जितनी 500 साल पहले थी और 1000 साल पहले थी। तो हरिदास ठाकुर और नित्यानंद को चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन बुलाया, हरिदास नित्यानंद आओ। नित्यानंद हरिदास आए, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, नित्यानंद हरिदास घर घर जाओ, लोगों को बोलो हाथ जोड़कर, बोलो कृष्ण वाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो हरिदास और नित्यानंद ने घर घर जाकर प्रचार करना शुरू किया। जब जगाई मिलाई कहा, पहले उन्होंने लोगों से पूछा, आपके गांव में सबसे पतित कौन है? तो लोगों ने कहा, दो भाई हैं जिनका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, तो बुरी संगत में गिरकर आज भयंकर शराबी इत्यादि बन गए। तो दोनों ने सोचा, हरिदास और नित्यानंद ने, अगर इनका उद्धार हो जाए महाप्रभु की महिमा और भी बढ़ जाएगी। और जब प्रचार किया तो नित्यानंद जगह मलाई ने भगा दिया। जब वो भाग रहे थे, हरिदास नित्यानंद से तेज भागे, परंतु नित्यानंद की कृपा से उनका उद्धार हो गया। किसका बधाई का। पर हरिदास और नित्यानंद घर घर जाकर प्रचार भी कर रहे थे, कई जगह उनका स्वागत किया जाता था, कई जगह उनका अपमान होता था, कई जगह लोगों ने अंदर भी नहीं आने देते थे, जब भी उन्होंने अपना प्रचार नहीं रोका। तो हरिदास ठाकुर, क्योंकि उनका जन्म मुसलमान खानदान में हुआ था, कभी वो जगन्नाथपुरी मंदिर के अंदर उन्होंने प्रवेश नहीं किया। वो जगन्नाथपुरी मंदिर के चक्र को देखकर प्रणाम करते थे। और रूप और सनातन जो मुसलमान राज्य के राज्य में कार्य कर रहे थे वो भी कभी अंदर नहीं गए, वो भी अंदर नहीं गए। क्यों? मंदिर के अंदर तो चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथपुरी के जगन्नाथ जी के दर्शन लेने के पश्चात आते थे हरिदास ठाकुर के पास जगन्नाथपुरी का महाप्रसाद लेकर अद्वैताचार्य ने श्रद्धा उत्सव के समय हरिदास ठाकुर को बुलाया, जब क्या कहते हैं पिंडदान करना था, तो उसमें ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। वेदाचार्य ने हजारों ब्राह्मणों को नहीं बुलाया, पर केवल हरिदास ठाकुर को बुलाया और भोजन खिलाया। अद्वैता ने कहा, क्या कर रहे हो, तुम्हारा समाज में स्थान बिगड़ जाएगा। मैं मुसलमान खानदान का व्यक्ति हूँ और मुझे दे रहे हो ये खाने के लिए। अद्वैताचार्य ने कहा, आपको खिलाना लाखों ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है। हरिदास ने यह स्थापित किया कि हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, पर जोर से लेना चाहिए, केवल मन ही मन में ले। तो आज तो चैतन्य महाप्रभु रोज जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश करने के पश्चात हरिदास ठाकुर को मिलते थे। सनातन रूप गोस्वामी विजय भी जब वृंदावन आते जगन्नाथपुरी आते थे, हरिदास ठाकुर को मिलते थे, उनके साथ ही रहते थे। तो हरिदास को पता था कि चैतन्य महाप्रभु अप्रकट होने वाले हैं। वो हरिदास का इतना गहरा स्नेह था चैतन्य महाप्रभु के प्रति कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाए ये भाव कि महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद वो जी पाएंगे। तो हरिदास ने निर्णय कर लिया, अब मैंने शरीर त्यागना है। गोविंद तो चैतन्य महाप्रभु का सेवक था, उसने महाप्रभु से कहा, लगता है हरिदास का श्वास ठीक नहीं है। महाप्रभु ने हरिदास को कहा, हरिदास तुमने बहुत जाप किया है, जाप भेजा कम कर लो, बीमार हो। हरिदास ने कहा, मेरी बीमारी यह है कि अपना माला का जाप मैं पूरा समाप्त नहीं कर पा रहा, मतलब 190 माला। तो चैतन्य महाप्रभु के समक्ष, वैष्णव के समक्ष चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का चिंतन करते हुए आज के दिन हरिदास ठाकुर अप्रकट हुए। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास को उठाकर पवित्र नदी में स्नान किया, खुद लोगों से दक्षिणा मांगी और बहुत बड़ा भंडारा किया हरिदास ठाकुर के त्रिभाव दिवस पर। तो आज नामाचार्य हरिदास ठाकुर का तिरुभाव तिथि है। आज के दिन वो अप्रकट हुए थे, तो हम भक्तों को हरिदास ठाकुर के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उनसे क्या भीख मांगनी चाहिए कि हमें हरिनाम में रुचि बढ़े, माई हरिनाम में रुचि बढ़े, हरिनाम में आकर्षण बढ़े और हरिदास ठाकुर के समान हमारा लगाव हरिनाम के प्रति बढ़े। और हरिनाम में रुचि बढ़ेगी तो आप आनंद ही आनंद अनुभव करोगे, और हरिनाम में रुचि घटेगी तो उसका भयंकर परिणाम होगा, क्या माया सुंदर देखेगी। हरिनाम में रुचि बढ़ेगी तो भगवान सुंदर देखेंगे, माया बदसूरत। और हरिनाम में रुचि घटाओगे तो माया एकदम खूबसूरत बन जाएगी और भगवान बदसूरत। तो हर चीज निर्भर है हरिनाम के ऊपर। और हरिदास ठाकुर ने हमें उदाहरण दिया कैसे हम दिन रात जाप कर सकते हैं पर थकते नहीं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने हमने प्रचार का आंदोलन आरंभ करने से पहले वो भी 10 साल के लिए उन्होंने हरिदास ठाकुर के समान जाप किया 300 3 लाख बार दिन में। हरिदास ठाकुर कुछ खाते नहीं थे, पीते नहीं थे, बोलते नहीं थे, जब तक वो अपना जाप खत्म नहीं करते थे। आज उनका तीर्भाव सीती है और हमें उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें कृपा दे कि भक्ति भावना हमारे भी बढ़े। हरिदास ठाकुर तीर्भाव सीति की गो प्रेम नंद हरे कृष्ण।
Thank you for listening to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj. For more information, please visit gkgoswami.com.